चले अब हम चलते हैं सबक नंबर 6 पे, पेज नंबर 25 है बुक का। ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे वहाँ मुज़क्कर थे सारे, इधर आप देखेंगे कि सारे गायब हैं। मसलन हुआ हिया, हु ही हा, कभी ये लफ्ज़ पहले सुने? बहुत दफ़ा सुने ना, कोई नई चीज़ नहीं है। तो हम देखेंगे कि हुआ क्या है। ये अलामत वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है। वाहिद मुज़क्कर क्या है? एक मर्द, एक कोई भी मेल। इसका तर्जमा वो किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है कुरान पाक में। मसलन हुआ कुरआनुन, वो कुरआन है। क्या मैं ये जो लफ्ज़ लिख सक ये कह सकती हूँ कि हिया कुरआनुन? क्यों? क्योंकि कुरआनुन मेल है, मुज़क्कर है, और हुआ उसके साथ मुज़क्कर लगेगा। हुआ यख्शा, वो डरता है। हुआ मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है, तुम्हारा मालिक है। हुआ ज़ालिमुन, वो ज़ालिम है। मैं कह सकती हूँ हिया ज़ालिमुन? नहीं कह सकते ना। या मैं ये कह सकती हूँ हुआ ज़ालिमतुन? नहीं कर सकते ना। अब यहाँ से देखें कि जब हम अरबी बोलें और उल्टे सीधे जुमले बोलें, किसी अरब को कहे हुआ ज़ालिमतुन तो वो हंसेगी ना। वो ऐसे ही है जैसे हम किसी को कह दें कि वो आदमी आती है, वो आदमी खाती है, तो लोग हंसेंगे ना। और इस तरह की गलतियां हम पता नहीं कितनी करते हैं, नॉर्वेजियन ज़ुबान में भी करते होंगे। अपनी तरफ से हम बहुत बोलते हैं, उनको आती है वो हंसेंगे। तो ज़ुबान इन्हीं चीज़ों से मिलके बनती है। पहली मिसाल देखें सूरह मायदा की आयत 120 में है, वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। इसी तरह सूरह कहफ की आयत 35 यानी 35 में आता है, वदखल जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुल्ली नफ़्सी, वो दाखिल हुआ अपने बाग में इस हाल में कि वह अपने ऊपर जुल्म करने वाला था। वाक़या याद आ गया होगा आपको बाग वालों का। तो यहाँ हुआ से मुराद वाहिद मुज़क्कर है। क्या है? आप बोलें सारे, हुआ से मुराद एक मर्द है, एक मुज़क्कर है। बोले सब, तो हुआ के बाद मुज़क्कर होगा ना सीगा, एक लफ्ज़ होगा मुज़क्कर। हम ये भी नहीं कह सकते कि लेट्स सी, जैसे हम कहें हुआ ज़ालिमून, मैंने क्या गलत किया? हुआ तो एक की ज़मीर थी लेकिन ज़ालिमून मैंने जमा का लगा दिया, ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ और कहना पड़ेगा। बहरहाल हुआ पे रही है, बात वाज़े हो गई। अब चलते हैं हिया, ये उसका ऑपोज़िट है। ये अलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, एक फ़ीमेल के लिए, और इसका तर्जमा भी वो किया जाता है। अच्छा, वो क्या है? दूर की चीज़। यहाँ ये भी लिख लें, मुनफसिल है ये अलामत, जो ज़मीर मुनफसिल है, यानी वो एक चीज़, एक होती है ये, लेकिन इसका तर्जमा ये नहीं बल्कि वो है। मसलन हिया जजरतुन, वो क़यामत एक डांट है। अब जजरतुन में ता से मुअन्नस हो गया ना, तो उससे पहले हिया, मैं ये कह सकती हूँ हुआ जजरतुन? बताइए। और मैं ये कह सकती हूँ हिया जजरुन ता के बगैर? ठीक है, ओके। इसकी इसका इस्तेमाल कुरान पाक में सूरत नाज़ियात की आयत 13 में आता है, फ़इन्नमा हिया जजरतुन वाहिदा, बस बेशक वो क़यामत एक डांट है। हमें लगती है डांट पड़ेगी क़यामत में, या क़यामत एक डांट की तरह लगेगी लोगों को? फिर इसी तरह आप देखिए हिया असाया, हज़रत मूसा ने क्या कहा था अल्लाह ताला को? अल्लाह ताला ये मेरा असा है। कैसे? अल्लाह ताला ने उनसे जब पूछा था, सूरह तौहा में आता है कि मूसा मा तिलका फी मा तिलका बि यमीनिका, तेरे दाएं हाथ में क्या? तो कहा हिया साया, ये मेरी लाठी है। फिर इसी तरह हिया हैयतुन, वो एक सांप है, जादूगरों के और मूसा के मामले में ये लफ्ज़ आया था। हिया तमूरु, सूरह कमर में आता है, वो ज़मीन घूमेगी, मौरा हाँ, वो ज़मीन हरकत करेगी। सूरत जैसे आप देखते हैं कि मुल्क किसे, ये एक ये जो लफ्ज़ है ना कि फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, सूरत नाज़ियात में है। फिर इसी तरह फ़इज़ा हिया तमूर, सूरत मुल्क की आयत 16 में आता है कि फिर वो ज़मीन अचानक हरकत करने लगेगी। ये जो मारा यमीर मोर जो होता है ना, उसको भी मोर इसीलिए कहते हैं कि वो गोल गोल नाचता है, घुमाता है, घूमता है, वही लफ्ज़ है ये भी। व इन्नल आखिरत ہی دار القرار. سورۃ مومن آیت 39 میں آتا ہے بے شک وہ آخرت ہی جائے قرار ہے. تو اب یہ بات واضح ہے ہوا اور ہیا کا فرق. اس میں اب تھوڑا سا ایک نوٹ ہے, اگر ہوا اور ہیا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ان لگتا ہو تو معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً لفظ ہی کا استعمال ہوگا. مثلاً یہ دیکھیے مثال سورۃ کوثر آیت 3 کی, ان شانیک ہو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی بنام و نشان رہے گا. تو ہوا کے بعد ال لگ کے ابتر لگا ہے نا. اسی طرح واللہ ہو الغنی, اللہ وہی ہے بے نیاز. سورۃ فاطر آیت 15. اسی طرح سورۃ توبہ آیت 40 میں آتا ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے سورۃ نازیات آیت 41 میں آتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو کیا پتہ چلی بات کہ ہوا اور ہیا کے بعد والے لفظ میں اگر الف لام ہوگا تو شدت پیدا ہوگی. اگر آپ اس کو یوں دیکھیں, سب سے اوپر علی آئے دیکھیں, ان شانیہ کا ہوا ابتر ہو سکتا تھا, نکرا سکتا تھا وہاں, لیکن اس کا معنی کیا نہ تھا, آپ کا دشمن نامو بے نام و نشان رہے گا. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کیا آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا, تو ہی کا لفظ اس کے اندر آ جائے گا. چلیے تیسری چیز دیکھتے ہیں, ہو اور ہی یعنی گول ہا پہ پیش اور زیر کے ساتھ, یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے اسم فعل یا حرف کے آخر میں شروع ہوتی ہیں. اس کی خوبی نوٹ کیجئے گا کہ یہ اسم کے ساتھ بھی آ جاتی ہے, فعل کے ساتھ بھی آ جاتی ہے, اور حرف کے ساتھ بھی آ جاتی ہے. تینوں کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اس اسما کے ساتھ کیسے آتی ہے, اگر ہو اور ہی اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً اس کا, اس کی, اس کے, یا پھر اپنا, اپنی, اپنے سے کرتے ہیں. مثلاً عندہ اس کے پاس, الی ربہ اپنے رب کی طرف, رسولہ عبدہ ہاں اس کا رسول, اس کا بندہ, جنتہ اس کا باغ یا اپنا باغ, وعندہ علم الساعۃ وإلیہ ترجعون فلہ اجرہ عند ربہ. سورۃ بقرہ آیت 112 میں آتا ہے کہ تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے, اور یہ ہم ترجمے میں بہت دفعہ یاد کرتے ہیں, کوئی مشکل چیز اس میں نہیں ہے. ودخل جنتہ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا باغ کہنا ہے یا اپنا کہنا, یہ ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے. دونوں طرح کر دیں غلط نہیں ہوگا. بعض دفعہ کچھ لوگ جب کچھ اسٹوڈنٹس کو خالی لفظ توڑ کے دیے جاتے ہیں تو وہ اس طرح ہی لکھتے ہیں, جیسے جنتہ ہو لکھا ہو تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں اس کا باغ اور کوئی لکھتے ہیں کہ اپنا باغ, تو دونوں ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ کبھی اس ٹیکسٹ میں آتا ہے کبھی اس میں. یہ بات کلیئر ہے, کوئی ایسا تو نہیں جس کو سمجھ نہیں آئی. آگے چلے, یہ کس چیز کی مثال تھی جی آپ ریحانہ؟ یہ بھی ہم نے کیا مثالیں پڑھی, ہو کس کے ساتھ آیا, اسما کے ساتھ آیا. اب ہم پڑھیں گے افعال کے ساتھ جب ہو آتے ہیں. اگر ہو اور ہی فعل کے آخر میں ہوں تو ترجمہ عموماً اسے یا اس کو کیا جاتا ہے. دیکھیں گرامر آپ کو سمجھ آ جائے گی, لیکن یاد کریں گے نا یہ ساری علامتیں آپ نے گھر جا کے رٹنی ہیں, اور رٹنے کی اب ضرورت نہیں کیونکہ ترجمہ آپ یاد کر چکے ہیں, صرف اب آپ کو اپنے ترجمے کی تصحیح کرنی ہے. تو جب یاد ایک دن کا لیسن اسی دن یاد کر لیتے ہیں, اب آپ کو مجھے پتہ سب سمجھ آ رہا ہے, لیکن جب آپ اس کو یاد نہیں کریں گے اور اگلے ٹاپک پہ چلے جائیں گے نا تو پھر آپ کو لگے گا بہت ہی کچھ تھا, سمجھ نہیں آیا. تو یاد کر لے, وہی چیز چلتی ہے ساتھ جو آپ کے دماغ میں ہوتی ہے, میموری میں ہوتی ہے. تو افعال کے ساتھ آنے کی مثالیں ذرا دیکھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ترجمہ اسے یا اس کو کیا جائے گا. مثلا یو تی ہی وہ اس کو دیتا ہے, کہاں آیا یہ لفظ, سورۃ جمعہ آیت 4 میں آتا ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یوتیہ آ گیا نا ہی اس کے ساتھ, یوتی کیا ہے فعل ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح دیکھیے سورۃ بقرہ آیت 146 یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, वो इसको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो यारी फून क्या लफ्ज है, फिर हु क्या है, ज़मीर है, तो उसके साथ आ गई। इसी तरह देखिएगा सूरत अल्लाह का आयत 3, वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, उसे वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से उसने गुमान भी ना किया होगा। तो यरज़ुकु के फरहाना बताएं, यरज़ुकु के फिर हु क्या आ गया, इसके साथ ज़मीर लग गई, तो वो उसको रिस्क देगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, हर्फ के साथ हु कैसे आएगा। अगर हु और ही हर्फ के आखिर में हो तो इसका तर्जमा अमूमन इस या वो किया जाता है। मसलन आप देखिए इलैही, अब इसमें हर्फ क्या है पहले ये मुझे बताएंगे, सब बोल दें। इला, इला है लफ्ज, ही लगा इलैही, तो इस या वो, बी ही हर्फ क्या है इसमें, बा बाजर बी, और ही उसके साथ, इन्नहु इन्ना हर्फ है, हु वो है, मिन हु, ठीक है। तो जैसे देखिएगा सूरह बकरा आयत 41 में आता है, वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, और मत बनो पहले इनकार करने वाले इसका। तो बी क्या था, हर्फ, और ही उसके साथ लग गया। इसी तरह सूरह यूनुस आयत 4 में आता है, इलैही मर्जियुकुम जमीयन वअदल्लाहि हक्का, इसी की तरफ तुम सबको लौटना है और अल्लाह का वादा है सच्चा, तो इलैही आ गया। इसी तरह सूरह हूद आयत 88 में आता है, अलैही तवक्कलतु व इलैही उनीब, बड़ा बारीक फ़र्क है इसमें अलैही और इलैही का, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं जाता हूँ। आप देख रहे हैं ना तर्जमा सारा जो आपके सामने रेड में लिखा हुआ है, इसी उसी उस यही आ रहा है। इसी तरह सूरह रूम आयत 45 में आता है, इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन, बेशक वो कौन, अल्लाह सुभान व तआला, काफिरों को दोस्त नहीं रखता। आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना ग्रामर जी फायजा, मुश्किल नहीं है ना, आपको तो और मुश्किल पढ़ानी चाहिए ताकि आप इसमें उलझें, और आसानी आसानी से पढ़ाएंगे ना। अच्छा, जिसको भी सर्दी बहुत लगे ना उसको ग्रामर पढ़ाएं, सर्दी भूल जाएगी। जिसका दिल उदास है उसको ग्रामर पढ़ाएं, जिसको कोई याद आ रहा है उसको ग्रामर पढ़ाएं, सारे गम भूल जाएंगे। हैं वो कहते हैं ना कि एक बंदा था तो वो बड़ा ही गरीब था, तो ऐसे ही किसी ने कहा बस 5 साल बाद तुम्हें एहसास भी नहीं होगा तुम गरीब। उसने कहा क्या मेरी गुर्बत दूर हो जाएगी, कहा नहीं फिर तुम्हें एहसास ख़त्म हो जाएगा, तुम कबूल कर लोगे। तो जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर वो हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ एक नोट है, अगर हु और ही से मुत्तसिल, मुत्तसिल क्या होता है, मिला हुआ, लिखिए वसल लफ्ज़ है, यानी अगर हु और ही से मिला हुआ लफ्ज़ जो है उस पे जज़्म हो या इनको अगले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ा जाए तो उल्टा पेश की बजाय सिर्फ पेश और खड़ी ज़बर की बजाय सिर्फ ज़ेर इस्तेमाल होती है। अब ये बात पढ़ने में इतनी मुश्किल है कौन उल्टा कौन सीधा, लेकिन अभी आप मिसाल देखेंगे तो आपको बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। पहले ये बात समझ लें है क्या, हु और ही से पहला लफ्ज़ जो मिला हुआ है उस पे अगर जज़्म हो, मसलन आप देखिए मिन हु, मिन पे क्या था, जज़्म है ना, तो ये बात तो पूरी हो गई। या फिर इसको अगले लफ्ज़ से मिलाने वाला छोड़ दे अभी, अब क्या होगा, तो उल्टा पेश की बजाय सिर्फ पेश और खड़ी ज़ेर की बजाय सिर्फ ज़ेर होगी। यानी आप ये नहीं कह सकते मिन हु मिन हु। आप देखिए अल्लाह ताला ने कैसे ज़ुबान बनाई है कि पढ़ा ही नहीं जाता उसे लंबा। और यहाँ आप देखेंगे कि तजवीद में जो गलतियाँ लोग करते हैं उसका ग्रामर पे कितना असर पड़ता है। यहाँ आसान सी बात है कि जैसे मिन के नून पे जज़्म है ना, तो मिन के बाद जब हु आएगा ना तो लंबा नहीं करेंगे, ये बात है इसकी। अच्छा, ये जो मैं अपने लफ्ज़ों में ठेठ सा बोलती हूँ ना, ये आप अपने ही लफ्ज़ों में ठेठ लिख भी लिया करें इधर, ताकि आपको अपनी नोटबुक को देख के बाकी ये बातें याद आएंगी तो फ़ौरन आप इसको समझ लेंगे, वरना आप ये मुश्किल चीज़ों में खुल उलझ जाएंगे ना। मुत्तसिल क्या है, पहले तो आपको मुत्तसिल पढ़ना ही नहीं आएगा, कभी आप इसको मुत्तसल कहेंगे कभी इसको मित्सल कहेंगे है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना नोट करने की होती हैं, जब उस्ताद पढ़े ना तो हाथ में पेन और फ़ौरन लिखें। मुत्तसिल लफ्ज़ बोला फ़ौरन मीम पे पेश ता पे जज़्म सा पे लाम डाल के उसको जमा कर लें कि शुक्र है मैंने एक चीज़ प्रिजर्व की है। अख़्ज़ करना सीखें, जितना ज़्यादा आप फोकस्ड होंगे, सिर्फ ये ना सोचा करें कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप समझे मैं उर्दू भी पढ़ रही हूँ, मैं अपनी अपना प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर रही हूँ। तो आते हैं वापस इस पे, मिन हू, इसी तरह देखिए फी ही, फी के या पे जज़्म थी ना, तो हम ये नहीं कह सकते फी ही। अब कितनी गलती करते हैं बच्चे जब लटका लटका के पढ़ते हैं, फी ही नहीं फी ही। अब अरब होगा तो वो फौरन समझ जाएगा कि इसने हा को लंबा क्यों कर दिया। इसी तरह आप देखिए दूसरा रूल क्या था, या इनको अगले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ा जाए। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं, लहुल मुल्कु, ठीक है, लहू को हम आगे लफ्ज़ अल मुल्क से मिला रहे हैं ना, तो अब हम ये नहीं कह सकते लहुल मुल्कु, हु को लंबा नहीं कर सकते। इसी तरह बिहिल अर्दा, तो हम ये नहीं कह सकते बिहिल अर्दा, और आप फील करेंगे पढ़ा भी नहीं जाता, ये मजहूल स्टाइल हो जाएगा। ये बात वाज़े हो गई है।